ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तथा कनाडा के द्विपक्षीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है और दोनों देशों को लोकतंत्र मजबूत करने के साथ साथ मानवता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कैनास्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और कनाडा के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।
कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है, भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा लोकतंत्र, स्वतंत्रता तथा कानून के शासन में मजबूत विश्वास की डोर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत को नियमित रूप से शामिल किया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समूह के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया के नेताओं के साथ भी कई द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान श्री मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने प्रमुख क्षेत्रों में भारत तथा जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने के तरीकों पर चर्चा की। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम पार्डो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार और अर्थव्यवस्था, हरित हाइड्रोजन, पोत निर्माण तथा संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी के माध्यम से सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा की। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी अलग से बैठक की। उन्होंने व्यापक मुद्दों का विचारों का आदान प्रदान किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के साथ बातचीत के बाद श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंध काफी मजबूत हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ भी गहन विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री कनाडा की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद आज क्रोएशिया रवाना हो गए। ये उनकी तीन देशों की यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव है। इसराइल की सेना ने ईरान में हुए हवाई हमले के दौरान वहां के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी सलाहकार और युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी की मौत की पुष्टि की है। शादमानी ने शुक्रवार को इसराइल के शुरुआती हमले में पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने के बाद कार्यभार संभाला था। ईरान की साइबर सुरक्षा कमान ने इसराइल पर व्यापक साइबर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया है। इस बीच कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने सामूहिक रूप से आह्वान किया कि गाजा में युद्ध विराम हो और पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति पर रोक लगे। हालांकि G7 ने सीधे तौर पर इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की अपील नहीं की। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नई दिल्ली में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के परिचालन की समीक्षा की। निदेशालय ने एयर इंडिया के बताए गए रखरखाव संबंधी मुद्दों पर चिंता जताई। एयरलाइन को इंजीनियरिंग, संचालन और ग्राउंड हैंडलिंग इकाइयों में आंतरिक समन्वय बढ़ाने तथा नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई। सिक्किम सरकार ने स्काई वन एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के 23 सीटों वाले हेलीकॉप्टर को किसी अन्य विमानन एजेंसी के 10 सीटों वाले छोटे विमान से बदलने का फैसला किया है। यात्रियों की उदासीनता, उच्च परिचालन लागत और सीमित लैंडिंग पहुंच को इस बदलाव का मुख्य कारण बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने असम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गृह मंत्रालय ने आज और कल के लिए राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। पुरुष और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आज से चेन्नई में शुरू हो रहा है। इस 10 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन तमिलनाडु हॉकी यूनिट कर रहा है, जिसमें 40 से अधिक आयु वर्ग के पुरुष और 35 से अधिक आयु वर्ग की महिलाएं भाग लेंगी। ऐसा टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है जो देश के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों को विशेष मौका दे रहा है। इस टूर्नामेंट में पुरुषों की 12 और महिलाओं की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।